ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय राजू भाई जी उपस्थित हैं। पूरे दिल के सम्मान के साथ एक हाथ की ताली का हम आपका बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं। राजू भाई से हम सभी सुपरिचित हैं, क्योंकि रोज सुबह हम प्यारे बाप दादा की जो साकार और अव्यक्त मुरलियां सुनते हैं, ये सारी मुरलियां पहले पहले आप साकार बाबा की आवाज से सुन करके उसे तैयार कर हमारे पास भेजते हैं। यज्ञ में जो भी स्व उन्नति और स्व पुरुषार्थ की बातें हम तैयार मटेरियल हमें मिलता है, आदरणीय राजू भाई जी की ही रचनात्मकता है। रोज सुबह हम बाप दादा से एक वरदान मुरली के बाद लेते हैं, पुरुषार्थ के लिए एक स्लोगन रोज सुनते हैं, ये सारी आपकी ही रचनात्मकता है। सबसे बड़ी विशेषता आपकी ये रही है कि जब से यज्ञ में आए हैं, सब प्रकार की सेवाओं में आपने हाथ बटाया है। छोटे से छोटी सेवा को भी आपने इतना निष्ठा से कर्तव्य निष्ठ होकर के बजाया है, जो आपकी सिंसियरिटी ने आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ाया है। यज्ञ के सभी वरिष्ठों के अति समीप तक पहुंचाया है। वैसे आपके साथ कारोबार में आए तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी धारणाओं का भंडार है। ज्ञान को हजम करना क्या होता है, ये हमने आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से देखा है, सीखा है। बाबा और बाबा के यज्ञ के प्रति जो फेथफुलनेस होती है, यज्ञ के अंदर आपकी ऑनेस्टी और आपकी फेथफुलनेस, ये अनुकरणीय है। और जब से आपने रूरल डेवलपमेंट विंग में मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप से सक्रिय किया है, तब से विंग को बहुत तीव्र गति से आपने ऊंचाइयों को पहुंचाया है। सिर्फ देश ही नहीं, लेकिन देश और विदेश में विंग के जरिए बहुत फास्ट गति से आपने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में अपना योगदान दिया है, जिसको कि बाबा सैंपल के रूप में हम सबसे चाहते थे। मिसाल के तौर पर योगिक खेती, इस तरह से रूरल डेवलपमेंट विंग के कई सारे कार्यक्रमों के लिए आपका अति विशिष्ट योगदान है। आज एक बहुत सुंदर विषय के साथ आप सब हम सबके बीच में हैं, मेरा बाबा जादू की छड़ी। ये छड़ी को हम कैसे आत्मसात कर ले, जो सदा मैं और मेरा बाबा, इसमें कोई डिस्टेंस ना बना रहे। आदरणीय भाई जी,
ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हम सभी बहुत प्यार से, दिल से, अनुभव के साथ इस शब्द का उच्चारण करेंगे, मेरा बाबा, और अंदर जाके मेरा बाबा। और जब मेरा बाबा कहते हैं तो कौन सा बाबा सामने आता है? बाबा के चार स्वरूप, वैसे भक्ति मार्ग के अंदर ब्रह्मा बाबा को कहीं चार मुख वाला और कहीं पांच मुख वाला भी दिखाते हैं। तो जब मेरा बाबा कहते हैं तो इसके साथ साथ एक तो हम सब शिव बाबा को पहचान करके सर्वशक्तिमान बाबा को उस ज्योति बिंदु स्वरूप में देखते हैं, और मेरा बाबा कह करके उसकी शक्तियों का अनुभव करते हैं। लेकिन जब बाबा का पाठ शुरू हुआ, शिव बाबा ने सबसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना की और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के अव्यक्त स्वरूप को इमर्ज किया। जब संदेशियां बाबा से मिलने जाती हैं तो शिव बाबा निराकार रूप में नहीं मिलते, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त स्वरूप से ब्रह्मा बाबा का बहुत चमकीला सुंदर लाइट का रूप और उसके बीच में चमकती हुई वो ज्योति शिव बाबा की मणि, जिसको बाप दादा हम कहते हैं, उस दूसरे स्वरूप को मेरा बाबा कह करके याद करते हैं। तीसरा साकार में ब्रह्मा बाबा जब थे तो आज तक दादियों की दिल में ब्रह्मा बाबा की पालना, उनके द्वारा मिला हुआ स्नेह, प्राप्तियां उनके नयनों के सामने घूमती हैं। मैं आपको एक दृश्य सुनाता हूं। मैं 3-4 दिन पहले दादी के पास गया था, जानकी दादी के पास। दादी स्टर्लिंग हॉस्पिटल में भर्ती थी, वहां मिलने के लिए गए तो दादी के बेड के सामने बाबा का, ब्रह्मा बाबा का फोटो था। तो हम लोग 10-12 लोग थे, जब खड़े हो गए तो फोटो ढक गया, पीछे हो गया। तो दादी कहती है, आप लोग हटो यहां से, इधर इधर हो जाओ। मैंने कहा, क्या हो गया? कहती, बाबा मेरा छिप गया, मेरा बाबा छिप गया, बाबा को सामने लाओ। दिन रात बाबा 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 उसके सिवाय। फिर जब मिलने लगी, बात करने लगी तो कहती है, मैं तो सदा बाबा को ही देखती रहती हूँ और जब इस बाबा को देखती हूँ तो बाबा कैसे समर्पित हुआ, कैसे उसने त्याग तपस्या और सेवाएं की, कैसे बच्चों की पालना की, कितना सहन किया, कितना सभी का सामना किया, क्या बाबा की जीवन थी। उसको देख करके मेरे एक एक दृश्य मेरे सामने आता है। मैं समझता हूँ हॉस्पिटल में दादी को केवल हम जब गए तो कहा गया, दादी 5 मिनट आप बैठ करके बात करो, और दादी कुर्सी पर बैठी तो 1 घंटा तक हम लोगों से बात किया, कंटिन्यू कोई ना कोई कहानी साकार के समय की सुनाती गई। तो ये रूप बाबा का दादियों ने देखा है, पालना ली है साकार में। तो सामने मैं समझता हूँ, जब वो बाबा शब्द कहती हैं तो साकार ब्रह्मा बाबा सामने आता है। और जब हम सब बाबा की अव्यक्त पालना, अव्यक्त रचना बाबा कहती हैं, तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में अव्यक्ति पालना जो मिली है दादी के द्वारा, गुलजार दादी जी के द्वारा, शायद अव्यक्त पालना वालों के सामने ये अव्यक्त स्वरूप दादी का आता होगा। मेरा बाबा कहते हैं, आता है कि नहीं आता है? जरूर आता होगा, क्योंकि इतने वर्षों की पालना, मैं समझता हूँ आज 47-48 साल से हम अव्यक्त पालना में पढ़ रहे हैं, और बाबा ने कौन सी बात, कितनी सारी शिक्षाएं, कौन सी धारणाएं, किस प्रकार की जीवन होनी चाहिए, अव्यक्त रूप में बाबा ने हम सबको बहुत पालना दी। तो बाबा के 4 स्वरूप तो सामने आए, मेरा बाबा कहा तो एक अव्यक्त बाबा का स्वरूप गुलजार दादी के माध्यम से सामने आ गया, दूसरा साकार बाबा जब साकार सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में रहे, उस समय शिव बाबा ने उनके द्वारा जो पार्ट प्ले किया वो स्वरूप आ गया, फिर तीसरा अव्यक्त ब्रह्मा जो संपूर्ण सूक्ष्म वतन निवासी, वो स्वरूप आता है, और चौथा निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप आता है जब मेरा बाबा कहते हैं तो। और पांचवा एक बहुत गुप्त रूप है, वो स्पष्ट भक्तों ने भी दिखा नहीं पाया और आप हम सब ब्राह्मण बच्चे भी अनजान हैं उस रूप से। 14 साल तक जो तपस्या हुई है कराची में, हैदराबाद में, उसमें एक बहुत अलौकिक पार्ट चला है पीयू का। और वो पीयू का पार्ट जो दादियों के माध्यम से ही चलता रहा, ब्रह्मा बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा मुरली सुनाते थे, लेकिन ज्ञान के रहस्यों को केवल बाबा ने अकेले स्पष्ट नहीं किया। बहुत सारे राज, बहुत सारे रहस्य अव्यक्त रूप में पीयू संपूर्ण ब्रह्मा की आत्मा का आवाहन होता था और बाबा आकर के सब बच्चों को पालना देते थे, डायरेक्शन देते थे। कई बार मम्मा बाबा भी उनके डायरेक्शन पर चलते थे। वो अलग पार्ट था और बहुत विचित्र पार्ट चला है जो 14 साल की तपस्या चली है। बहुत से रहस्य बाबा ने उसमें खोले हैं, जितना भी ज्ञान हम सबके सामने आज स्पष्ट है वो सब संदेशियों के माध्यम से खुला है। चाहे वो 3 लोकों का ज्ञान है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, सूक्ष्म वतन का ज्ञान है, या वो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मपुरी है, ब्रह्म तत्व है, उसका ज्ञान है, उस सब राज, सब रहस्य उस पीयू के माध्यम से दादियों के ट्रांस मैसेज के द्वारा खुले हैं। तो वो ब्रह्मा बाबा का, वो मेरे बाबा का, वो भी अव्यक्त पार्ट चला है, वो हम लोगों से भी, कईयों से अभी तक छिपा हुआ है, नहीं पता है। तो जब हम आप बाबा, मेरा बाबा कहते हैं तो सब स्वरूप से बाबा सामने आता है, सब संबंधों से सामने आता है, क्योंकि एक बाबा ऐसा जादू की छड़ी है या ऐसी सुंदर चाबी है जो लगाते ही सब खजाने खुल जाते हैं। एक वरदान शायद आप लोगों को याद हो जिसमें बाबा ने कहा था, एक मेरा बाबा शब्द में ही सारी पढ़ाई का तंत्र है, सार है। आप बच्चे दिल से मेरा बाबा कहो तो देखो बाबा कैसे सेकंड में आपके सामने हाजिर हो जाता है। और इसके बड़े सुंदर सुंदर अनुभव हमारे बाबा के सच्चे दिल वाले बच्चों के पास हैं, दिमाग वालों के पास इतने नहीं हैं। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहते हैं वो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं, बहुत सारे वार से बच जाते हैं, बहुत सारी बातों की जो प्रॉब्लम्स आती उनका हल उनको मिल जाता है, बड़े दिल से बाबा कहते हैं। ऐसे ऐसे स्थानों पर जहाँ पर आतंकवादियों के बीच में आ गई, कई जगह पर ऐसी परिस्थितियाँ आई जो बहनें जिनको धमका करके, अलग ले करके उनसे कुछ पैसा वसूलना चाहा, कुछ उनसे मांगने किया कि इतना दो नहीं तो उड़ा देंगे, सेंटर को खत्म कर देंगे, सिर्फ एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, कोई हथियार नहीं अपनाए, कोई के पास कंप्लेन नहीं की, एक बाबा के भरोसे से। कुछ समय पहले की एक घटना है, आसाम में उल्फा उग्रवादियों के बीच में उन्होंने देखा एक बहने अलग अलग बड़े बड़े सेंटर्स बना करके रहती, इनके पास पैसा होगा तो उन्होंने बहुत सारे पैसे की डिमांड रखी और कहा कि इतना पैसा लेकर के इस स्थान पर आपको इस तारीख को इतने बजे पहुंचना है। अब आप जानते हो बहनों के पास होता है पैसा क्या, तो सब बच्चों के सहयोग से सेंटर बनते हैं और उनके एक एक पैसे का हिसाब बाबा के घर में आता है, उनके पास पैसा कहाँ से आया। तो उन्होंने बड़े प्यार से उस उनके इस फोन को, उनकी इस धमकी भरे पत्र को सुना, पढ़ा और बाबा के ऊपर छोड़ दिया, कोई को नहीं कहा। लेकिन जब समय आया, जब जाना था, उनको बहुत प्यार से टोली बनाई, बैज लगाया, बाबा के कमरे में गई और कहा, बाबा आप तो सब कुछ देने वाले हो, जो देना इनको दे देना, अब मेरे पास जो है मैं तो वही लेके जा रही हूँ। और जब उनके बीच में गई उसी समय पर तो देखा है तो बहुत निर्भय होकर के आ रही है बहन, ऐसा कभी कोई आता नहीं है, बहुत डरा हुआ होता है या उसके पीछे कोई गैंग होती है, पुलिस होती है, कोई बात होती है। तो जब उसको निर्भय देखा तो उन्होंने सोचा, संकोच किया कि जरूर इनके पीछे कोई होगा, तो बहुत जोर से धमकी दिया बहनों को, बंदूक तान दी सामने से, बताओ तुम्हारे साथ कौन आया है। बहनों निश्चिंत बिल्कुल बेफिक्र जब उसको अलग कमरे में ले गए सामने, बोला बता तेरे पास कौन है, तो बोले मेरे साथ कोई नहीं आया है भाई, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। बोले नहीं कोई तो है, जो तुम इतना निश्चिंत हो, इतना निर्भय हो। तो उसकी नजर ऐसे बेंच पर चली गई, कहती ये मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ। और जब बाबा शब्द कहा उसने, उसी समय उसके पैरों पर आ गया, कहता बहन मेरे से गलती हो गई, तुम्हारे साथ भगवान आया इसलिए तुम इतना निश्चिंत हो। तो उस भाई बहन ने बहुत प्यार से उसको कहा, नहीं आप में मेरे भाई हो, आप जो कर रहे हो वो अपने हित के लिए कर रहे हो, लेकिन हमारे लोगों के पास फिर ज्ञान सुनाना उसने शुरू कर दिया, ज्ञान का खजाना है, ज्ञान की अखुट संपत्ति है। और उसने बहुत प्यार से आत्मा परमात्मा का ज्ञान उसको दिया, फिर प्यार से टोली खिलाई और वो भाई बहुत प्यार से उसको फिर छोड़ के गया, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इतना निश्चय से सुनाती है वो अनुभव, कभी कभी जब मिलती है कि ऐसे बाबा ने मेरी रक्षा की, बाबा मेरा है, मेरा बाबा, दिल से उसके निकलता है। ऐसी कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे अनुभव हमारे भाई बहनों के पास हैं जो मेरा बाबा कहते ही बाबा की हाजिरी का, उसके साथ का बहुत सुंदर अनुभव होता है। ये जादू की छड़ी नहीं तो और क्या है। बाबा का नाम याद आ गया, बाबा का रूप याद आ गया, बाबा के गुण याद आ गए, बाबा के कर्तव्य याद आ गए, बाबा का धाम याद आ गया, कोई एक चीज तो बाबा कहते याद आएगी। तो कभी भी चलते फिरते दिल से निकलता है मेरा बाबा कौन है, बहुत पहचान के साथ। आजकल हमारी दादी गुलजार दादी सिर्फ एक ही शब्द यूज करती, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बस। और इसी एक बाबा शब्द के अंदर सारा ज्ञान कैसे समाया हुआ है, अब थोड़ा सा विचार करो, इसकी थोड़ी सी गहराई में चले जाओ, क्योंकि बाबा बीज है और बीज को हाथ में ले लिया, उसको पहचान से जब बाबा कहा तो उस बीज के साथ सारा वृक्ष, पूरा कल्प वृक्ष सामने आता है। वृक्ष का आदि, मध्य, अंत, बहुत बड़ा विस्तार है। बाबा में सार है और वृक्ष में बहुत बड़ा विस्तार है। जब बाबा शब्द निकलता है और वो बीज रूप में याद आता है तो वृक्ष पति है। सारे वृक्ष की, इतने बड़े वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी पालना, उसका संहार, उसका परिवर्तन कैसे होता है, नॉलेज फुल स्टेज अगर किसी को इस शब्द से बनानी हो तो बन सकता है कि मैं, मेरा बाबा। बीज की स्मृति आते ही, बीज जैसे आप स्थूल में बीज को देखेंगे तो बीज बड़ का होगा, बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा, और उस बड़ के बीज को हाथ में लेंगे तो बीज को देखते ही क्या याद आएगा, इतना बड़ा वृक्ष इससे निकलता है, उसकी इतनी शाखाएं, पर शाखाएं, उप शाखाएं, और उसको कैसे उसका हरा भरा रूप बीज से दिखाई देने लगता है। तो बाबा कई बार कहते हैं वो तो बच्चे जड़ बीज है, वो तो अपने वृक्ष की नॉलेज नहीं बता सकता है कि मेरे से कैसे बीज से झाड़ निकला, मैं तो चैतन्य बीज रूप हूं। तो जब बाबा को हम बाबा कहते हैं तो क्या वो बीज रूप में बाबा याद आता है जिसने अपनी इतनी सुंदर रचना रची, जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक सत धर्म की स्थापना हुई, ब्रह्मा बाबा की तपस्या से ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का टाइटल दिया, और उसके द्वारा इतनी सुंदर रचना जो आधा कल्प तक एक तना एक वृक्ष रहा और उसके फिर शाखाएं निकलना शुरू हुई, और शाखाएं उप शाखाएं पर शाखाएं निकलते निकलते झाड़ इतना बढ़ गया, आज इतनी करोड़ों आत्माएं हो गई। और फिर कैसे बाबा फिर से इससे कलम लगाता है ये कलम लग रही है वही देवता घराने की, तो पूरा वृक्ष नॉलेजफुल आत्मा के सामने आ जाता है कि एक मेरा बाबा में सारा वृक्ष समाया हुआ है। फिर बाबा शब्द हम कहते हैं तो बाबा सर्व संबंधों की सैक्रीन है। आज दुनिया के अंदर कितना बड़ा विस्तार है संबंधों का। कई बार बाबा कहता है अरे बच्चे कुमार कुमारियां बड़े अच्छे हो, तुम्हारे आगे तो कोई भी वृक्ष नहीं है सामने, जो शादी कर लेते हैं उनसे पूछो कितना बड़ा विस्तार होता है, कितने सासू ससुर देवर नाथ पता नहीं कौन कौन से संबंध बाबा उनका विस्तार सुनाने लगता है। कितने बड़े विस्तार के अंदर हम सब कलयुग के अंदर तो और ज्यादा फंस गए। सतयुग में भी बहुत छोटा परिवार था, बड़ा होते 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 आज तो बहुत बड़ा बखेरा बन गया। और बाबा कहता है बच्चे तुम बाबा कहो और सब संबंधों का विस्तार मकड़ी का जाल सिमट जाता है, एक बाबा में सब संबंध आ जाते हैं। और जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा को सर्व संबंधों से याद करती हैं वो देह के सब संबंधों के विस्तार की जाल को हप कर सकती हैं। कुछ दिन पहले ऐसे बाबा की मुरली साकार बाबा की चल रही थी कि बच्चे बहुत बड़ा विस्तार करके तुमने मकड़ी की तरह जाला बुन लिया, अगर इसको हप नहीं करोगे तो इसमें जाके फंस जाओगे, खत्म हो जाओगे। आज जितने भी मोह ममता दुख अशांति है उसका कारण मेरा, मेरा बच्चा मेरा पोता मेरा नाती मेरे ये विस्तार हो गया ना। और कितने विस्तारों में हम सब फंसे हुए हैं अब विचार करके देखना, क्या हमने बाबा कहा है तो विस्तार को समेट लिया है कि अभी भी बहुत सारे बकेरे हैं, बहुत सारे संबंध हैं, ऐसा ये है। बाबा ने हम सबको तो सचमुच ऐसा बना दिया जो कोई बकेरा ही नहीं रखा, कोई है ही नहीं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। और उसमें भी सब संबंधों की सैक्रीन, माता का सुख चाहिए सवेरे सवेरे ब्रह्मा माँ के द्वारा उठाता है प्यार से। साकार बाबा कई बार कहते थे साकार के समय मैं बच्चों को उठाता हूँ फिर बच्चों के लिए भोजन तैयार करता हूँ। ब्रह्मा बाबा की अनुभव सुने होंगे, ब्रह्मा बाबा कहता था कोई बाबा के साथ मुरली के पहले पहुंच जाता था और बाबा से कोई बात पूछने लगता था, कोई बात करता था तो बाबा बड़े प्यार से कहते थे बच्चे अभी भोजन तैयार कर रहा हूँ बाद में बात करना। ब्रह्मा माँ अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही, पत्र लिखते या कुछ भी करते थे बाबा सवेरे सवेरे। तो मुरली का चिंतन करना मनन करना उसकी गहराई में जाना बच्चों को क्या नई बात देनी है, तो ब्रह्मा माँ सवेरे सवेरे उठ करके बच्चों के लिए अच्छा अच्छा भोजन तैयार करती थी। फिर बाप के रूप से बच्चों के बीच में आकर के बच्चों को पालना देना भाषणा देना पढ़ाना, टीचर बन करके एकदम अथॉरिटी के रूप में पूरे सृष्टि का ज्ञान देना, पुनर्जन्म का ज्ञान देना, कर्मों का ज्ञान देना, कितना ऊंचा ज्ञान ज्ञान सागर के रूप में बाबा ने दिया। फिर सतगुरु के रूप में बच्चों को श्रीमत दी श्रेष्ठ मत दी, ऐसे चलना ऐसे रहना ऐसे करना, सदगति की संपूर्ण मत दे दी। फिर साजन का साथ, बच्चे खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते तो मुझे याद कर, तुम्हें से खाऊं तुम्हें से बैठूं तुम्हें से बात करूं, एक मेरा दूसरा न कोई, एक वफादारी का रिश्ता साजन और सजनी के बीच में होता है। अगर कहीं भी दूसरी जगह आंख चली जाए तो घर में झगड़ा होने लगता है। बाबा भी कहता है मेरी वफादार होकर के रहना, कहीं पर भी किसी देहधारी में तुम्हारी आंख न चली जाए, मेरा तो एक कहा है तो संपूर्ण सजनी बन करके मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं, एक ही साजन है हम सब आत्माओं का, हम सब सीताएं हैं भक्तियां हैं और वो हमारा भगवान बाप राम है। तो उस रूप से भी साजन सजनी के संबंध से, फिर बंधु सखा साथ में खेलता है साथ में दिल की बातें करता है। कहते हैं बाबा साकार में भी और अव्यक्त रूप में भी जब विदेशी बच्चे बाबा के सामने आते थे आए तो बाबा कहता था कि तुम लोगों को दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं ना, मित्र चाहिए फ्रेंड चाहिए, तो क्या तुमने खुदा दोस्त खुदा को दोस्त बनाया है? जो माँ बाप से बात नहीं करते कर सकते टीचर को नहीं सुना सकते वो दोस्त को सुना देते हैं। तो कोई भी ऐसी दिल की बातें हैं आपके दिल में भी कोई बातें हों तो खुदा दोस्त के पास चले जाना, खुदा दोस्त को बाप बहुत अच्छी अच्छी तरह से प्यार से सब कुछ सुना सकते हो। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा खुदा दोस्त का भी पार्ट बजा लेता है। फिर एक संबंध और जो सबको प्यारा होता है बच्चा, बाबा कहता तो मुझे बच्चा बनाया है, बनाया है सबने, बच्चे के लिए जैसे हिस्सा निकालते हैं, बच्चे के हर चीज का ध्यान रखते हैं, खाने पीने पहनने घूमने संग सबका ध्यान रखते हैं। तो जिस प्रकार से लौकिक में संबंधों की अनेक प्रकार की वैरायटी है और अनेक प्रकार के संबंधों से प्राप्तियां हैं, उन सब प्राप्तियों का एसेंस एक बाबा से हम ले सकते हैं। और बाबा को अगर उसी संबंधों से हम बहुत प्यार से याद करते हैं तो बाबा अपना वो रूप प्रकट कर लेता है, कहीं न कहीं से उसकी भावना भी दिला देता है। इसलिए सब संबंधों की सैकड़ेन एक मेरा बाबा, भूलना नहीं। जब भी बे मेरा बाबा कहो तो जिस संबंध से, माँ बाप टीचर बंधु सखा स्वामी सतगुरु। एक जगह में गया था तो एक बहन ने मुझे कहा कि बाबा तो कभी धोबी बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, सर्जन बन जाता है, कभी कोई रूप ले लेता है, कभी कोई रूप ले लेता है, हर बात में नंबर वन है। तो मैं तो हर संबंध से बाबा को रोज पत्र लिखती हूँ। तो उसने मुझे अपनी डायरी दिखाई, हर संबंध से उसने पत्र लिखा था और कहती थी जिस दिन मैं बहुत प्यार से उस संबंध से पत्र लिखती हूँ बाबा सचमुच वो अनुभव मुझे साकार में कराता है। तो जब मैं अचानक गया था उसके सेंटर पर तो हमने कहा आज क्या लिखा है तुमने, तो कहती है आज मैंने लिखा था बाबा भोला भंडारी हो, और ये भंडारी भर गई है, कोई मधुबन से भेज दो ले जाया करके भंडारी। इतना प्यार से उसने पत्र लिखा और पढ़ के मुझे सुनाया कि देखो ये मैं लिख रही थी और आप सामने आ गए, ये भंडारी अभी आप खाली करो ले जाओ यहां से। मतलब जितना प्यार से दिल से बाबा कहते हैं वो संबंध, बाबा उस संबंध से निभाने के लिए तैयार हो जाता। अभी अगर कोई दिल से कहे मेरा बाबा मेरा सर्जन है तो क्या बीमारी में वो नहीं हाजिर होगा क्या? एक बुजुर्ग दादा के सुनाता हूं कहानी। बुजुर्ग दादा थे अहमदाबाद में गुजरात के, वो अचानक बीमार पड़े, उनको पैरालाइज हो गया। और पैरालाइज हुआ तो एक पूरा अर्धांग हो गया, जैसे मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते। उसको भर्ती कराया उनके बच्चों ने हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में गए और जब वो डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टर तो फिर अपना काम करते हैं, इंजेक्शन देना वो करना वो करना, तो उनके मुंह में नली डालने लगी खाना खाने के लिए। तो कहने लगा मेरे मुख में नली नहीं डालना, मैं नहीं डालने दूंगा। तो बच्चों ने देखा कि बाबूजी को बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, वो रो रहे हैं कि मुझे तो यहां से तुम ले चलो, मेरा बाबा बैठा है वो ठीक कर देगा, मैं डॉक्टरों के से दवाई नहीं करो। अब बाबूजी ने बहुत बहुत जिद किया, उम्र भी ज्यादा थी, तो बच्चों ने सोचा ऐसी उम्र में मैं क्यों इनको तंग करूं, चलो इनको ले चलते हैं। वो हॉस्पिटल से उसको ले आए घर में, ले आए तो कहता है कि सब बहनों को और हमारे जितने सेंटर के भाई हैं उनको बुलाओ, सब यहां बैठ करके योग करें। पूरे रात के समय सबको बुलाया, दो तीन घंटे की भट्टी रख दिया, सब भाई बहने आ गए, क्योंकि स्नेह तो था और परिवार थोड़ा अच्छा था। तो सारे परिवार के बाबा के बच्चे वहां पहुंच गए, तो एक बहन उसमें ट्रांस में जाने वाली थी और वो ट्रांस में उसी संगठन के बीच में योग भट्टी के अंदर चली गई और वो कहती है बाबा कहता है बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग कोई भी प्रकार का और इलाज नहीं करो, बाबा इसके साथ है। अब बताओ कहां इतना बड़ा पैरालाइज का पेशेंट और वो कह रहा बाबा उसके द्वारा संदेश दे रहा है बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर के बाद जब सब चले गए तो वो कहता है बस बाबा 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 ऐसे ही कर रहा था, कहता उसके सामने बाबा आ गए। और जब बाबा आए कहते बच्चे तेरे को क्या हुआ है, तुम बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो बोलता बाबा ये मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है, मैं बोल नहीं सकता हूँ खा नहीं सकता हूँ। तो कहते बाबा ने दोनों हाथ से मेरा ऐसे पकड़ा गर्दन और ऐसे किया झटका लगाया और मुंह सीधा हो गया। अब जब मुंह सीधा हो गया तो फिर बोला अच्छा बाबा बच्चे और क्या हुआ है, बोला बाबा मेरा हाथ भी नहीं उठता है। कहते देखो बाबा कहते ऐसे हाथ किया ऐसे, कहता बच्चे इसको तो कुछ नहीं हुआ उठाओ, तो ऐसे हाथ उठाने लगा वो ऐसे ऐसे करने लगा, हाथ भी उठ गया। फिर बोला पैर बाबा नहीं उठता है, अच्छा बच्चे फिर पैर पर ऐसे हाथ घुमा दिया। अब वो अनुभव आप सुनो, सुन करके मुझे तो बड़ा वंडर लगता है कि ऐसा भी बाबा करता है क्या, लेकिन उसका इतना जिगरी बाबा से प्यार था जो बस बाबा 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 कह रहा था और बाबा उसको अनुभव करा रहा था। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने देखा ये बाबूजी तो एकदम ठीक हो गए। अब बाबूजी दूसरे दिन एकदम खड़े हो गए, कहते हैं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है, मेरे को बाबा रात को सब ठीक करके चला गया, अब मुझे गांव गांव में जाके सेवा करनी है। अब बच्चे कहते हैं इस उम्र में बाबूजी आप कहाँ जाओगे, आप जो कहो हम कर देंगे, अभी जाना कहीं नहीं है। बोला ऐसा करो सब गांव वालों को ब्रह्मा भोजन कराओ, हमारे जितने संबंधी हैं सबको बुलाओ, जितने भाई बहने हैं जितनी टीचर्स हैं सबको बुलाओ। कहते करीब 80-90 टीचर्स पूरे सब जोन की इकट्ठी किया, 1000 भाई बहनों को बुलाया, सबको कहा चाह जो आपको करना है करो, उनको ब्रह्मा भोजन किया, अपने हाथ से सबको सौगात दिया। और कहते वो कम से कम 12 या 18 मास जीवित रहे। 18 मास के बाद उन्होंने डेट बता दी थी, इस तारीख को बाबा का विमान आएगा और मुझे ले जाएगा, बाबा का विमान आएगा और मुझे ले जाएगा। 18 मास तक उन्होंने अच्छी तरह से जीवन जिया, लास्ट में थोड़ा सा कुछ पेट का हुआ गड़बड़, और फिर लास्ट को कहते हैं आज रात को विमान आया तो बच्चे सब हंसने लगे, एयर इंडिया का विमान आएगा या इंडिगो आएगा, तो समझते थे दादा तो ऐसे ही बोलता रहता है। बोला नहीं नहीं आज मेरे बाबा वो विमान बच्चे ऐसा नहीं होता है, वो तो उड़न खटोला होता है, वो आएगा आज। तो 4 बजा गीत बज रहा था योग में, चल उड़ जा रे पंछी, और बस गीत बजते बजते वो एकदम बच्चों को ऐसे किया आशीर्वाद जैसा, हाथ ऐसे करने लगा, तो बच्चे आजू बाजू तो बैठे थे वो सब देखा, बाबूजी सचमुच तो जा तो नहीं रहे हैं, विमान आ तो नहीं गया। तो कहते उसी समय सबको फोन करके बुला लिया, जो भी आजू बाजू सोए हुए थे जगा करके बुलाया, सब आ गए। सुबह सुबह 4 बजे के समय बाबूजी के मुंह में अमृत डाला, गंगा जल डाला, बात किया, और ऐसे दृष्टि देते देते वो बाबा की गोद में चले गए। ये सच्चे दिल का सौदा है, सच्चे दिल की बात, सच्चे दिल से मेरा बाबा कहा तो परिवार को इतना निश्चय। वो भाई जब अनुभव सुनाता है, हमारे साथ कहीं कहीं जाता है जादू का खेल दिखाने के लिए, मैं उसको साथ ले जाता हूँ, वो बच्चा जो उनका है, और बहुत प्यार से अनुभव सुनाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा ऐसा भी करता है क्या। अब ऐसा नहीं आप लोग सब बाबा पर ऐसे डिपेंड हो जाना, लेकिन सच्चे दिल का सौदा है, सच्चाई बहुत बाबा को पसंद है। सच्चे दिल से जो मेरा बाबा कहता है, बाबा उसके लिए सर्जन भी है, साजन भी है, बंधु भी है, सखा भी है, बच्चा भी है, तो उनका धोबी भी है, कपड़े भी धो देता है, सफाई कर देता है, मैल आत्मा के धो रहा है ना। तो सर्व संबंधों की सैक्रीन बाबा है, एक बाबा शब्द में सब संबंध समाये हुए हैं। जिस संबंध की कोई भी जरूरत हो, कई कुमार है ना, कुमार सोचते हैं मैं अकेला हो गया, कभी बीमार पड़ जाए ना, वैसे तो खूब सेवा करते हैं, कभी कोई याद नहीं आता, वो तो जब समझते हैं मेरी जैसी कोई लाइफ नहीं, बहुत अच्छे मस्त रहते हैं, लेकिन जब अकेले में बीमारी आती है, कोई पानी नहीं पूछता है, कोई दवाई देता नहीं है, कोई खाना नहीं बनाने वाला होता है, तो थोड़े समय के बाद निराश होने लगते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, कोई मदद नहीं मिली, फटाफट साथी संगी की याद आने लगती। लेकिन अगर संपूर्ण निश्चय है कि बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा रक्षक है, बाबा मेरा रखवाला है, तो क्या करेगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा पक्का है कि कच्चा है, पक्का दिल से बोल रहे हो, अच्छा जो पक्के हैं वो तो बच जाते हैं, कच्चे हैं वो तो जाके शादी कर लेते हैं, संबंध चाहिए ना। लेकिन ध्यान ये रखना कि सचमुच अगर सच्चाई है तो कहीं ना कहीं से मदद मिलती है। एक कुमार था, बहुत अच्छे अनुभव उसके, इसलिए सुनाता हूं। करीब 20-25 का ग्रुप है कुमारों का, एक जगह में गया, अभी सरेंडर है, उस समय वो ऐसे सेवा पर आता रहता था, तो स्कूटर से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और गिर गया, तो सारा दिन सेवा सेंटर पर कर रहा है, कुछ कमाता भी नहीं था, जो बहने कहती थी भागता था इधर से उधर। अब स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, तो उसके साथी जो थे कुमार दूसरे, उसको उठा करके लाए हॉस्पिटल में ले आए। जब गिर जाता है, चोट लग जाती है, और उसको 3 महीने 2 महीने की बेड रेस्ट बोल दी जाती है, तो सब संबंधी आ जाते हैं, भाई इसको मदद चाहिए क्या है। अब उसने अपने संबंधियों में तो कभी कुछ किया ही नहीं था मदद उनको, कभी कुछ दिया ही नहीं था, कभी कुछ उससे पूछा ही नहीं था, तो क्यों परिवार वाले पूछेंगे। तो सब कुमारों ने सोचा कि अभी मेरा फर्ज है, इस भाई ने ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने जाके डॉक्टर की सेवा की और डॉक्टर को समझाया ये बहुत समर्पित है, ये ब्रह्मा कुमारी के सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसके पास पैसा तो नहीं है, आपको पैसा तो कुछ नहीं मिले, इसकी आप सेवा कर दो, हम इसकी संभाल कर लेंगे। उन सब कुमारों ने मिलकर के उसको प्यार से संभाला, खड़ा किया, अच्छी तरह से डॉक्टर की सेवा करके उसका ऑपरेशन कराया, और ठीक हो गया, और उसके बाद समर्पित हो गया सेंटर पर। लेकिन वो ऐसा बड़ा पेपर ऐसा आता है अचानक कईयों के सामने, इसमें हार जाते हैं। समझते हैं बाबा थोड़ी मदद करता है, बाबा ऐसे स्थूल में कैसे मदद करेगा। लेकिन सचमुच अगर सच्चे दिल से बहुत संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर के कोई बाबा कहता है तो बाबा हर रीति से किसी न किसी रूप में उनकी हेल्प जरूर करता, मदद के लिए पहुंच जाता है। लेकिन परीक्षा लेता है, ऐसे नहीं कि सच्चाई है इसके अंदर या थोड़ा थोड़ा सोचता रहता है वो तो ऊपर रहता है, वो तो निराकार है, वो कैसे साकार में आएगा, साकार में कोई तो चाहिए, तो चाहिए तो बाबा कहता है चलो ले लो चाहिए। इसलिए ध्यान रखना बहुत सच्चे दिल से हर बात में। कहता है मैं कंबाइंड हूं, लेकिन मेरा बाबा कहकर के उसको कंबाइंड अनुभव किया है, ये अनुभव की बात है ना। बाबा तो है ही ऊपर, और वो कहता मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। जब सर्वव्यापी नहीं है फिर भी कहता मैं कंबाइंड हूं, मेरे बच्चों के साथ रहता हूं। एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा था, बच्चे आपको पता है बाबा का निवास स्थान कहाँ है? तो सबने कहा सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है, ये है ये। बाबा नहीं, बच्चे जहां बच्चों के स्नेह का घेरा है वहां बाबा रहता है। स्नेह का घेरा चाहिए, स्नेह के घेरे में बाबा रहता है। तो अगर हमने बाबा को बहुत स्नेह से सच्चे दिल से बाबा कहा है तो बाबा को पहुंचने में कितना दिन लगता, बहुरूपी है ना, एक सेकेंड से भी कम समय, सेकेंड तो यहां की गिनती में आता है। आप बाबा कह करके देखो बाबा आ जाएगा। एक और बात सुनाता हूं, एक भाई को कोई ने ईर्ष्या के बस, एक डॉक्टर बहुत अच्छा था एक सेंटर पर, ईर्ष्या के बस पुलिस में ऐसी कंप्लेन कर दी, डॉक्टर था, और उसको जेल हो गई। बहुत अनन्य बाबा का बच्चा था, अब जेल में चला गया, और जेल ऐसी हुई जो कहते हैं इसको जमानत भी नहीं मिल सकती। अब भाई बहने उसके पास जाए तो बुरा, बहुत बुरा फंस गया, और एकदम पक्का खाना नहीं वहां, दूसरी चीजें नहीं, वो तो बहुत बाबा का अनन्य बच्चा था। बाबा को पता चला यहां पर अव्यक्त बाबा आए हुए थे, मुरली में बीच में रोक करके ऐसे बाबा ने बोल करके शायद उसने याद किया होगा, यहां बाबा ने दृष्टि दी उसको और कहा बच्चे दिल से मेरा बाबा कहो, बाबा हाजिर हो जाए। अब ये न्यूज, ये बात उस समय मुरली सुनने वाले सुनते तो ना, डायरेक्ट लाइव होता है, तो सुनने वाले उसके पास दौड़ के पहुंच गए कि बाबा कह रहा है दिल से मेरा बाबा कहो मैं आ जाऊंगा। तो क्यों नहीं इतनी देर से बाबा कहते हो? कहते सचमुच उसने बहुत प्यार से बैठ गया, दिल से बाबा आप ही रक्षक, आप ही छुड़ा सकते। और उसने जब बाबा शब्द कहा तो थोड़े समय के बाद ही ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस लेटर आता है कि डॉक्टर निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाए, कोई जमानत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया कि इसको छोड़ दो, ये निर्दोष है। तो आप समझ सकते हो कौन करण करावनहार है। बाबा सचमुच करण करावनहार है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है, जहां सच्चाई का संबंध है, सच्चे दिल है और कोई गलती ऐसी नहीं है, वहां पर बाबा को पहुंचने में देर नहीं लगती। लेकिन दिल बहुत सच्चे चाहिए, जरा भी खोट नहीं चाहिए, सर्व समर्थ और सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। उस नजर से याद करते हो मेरा बाबा, मैं तो कमजोर हूं, मेरे में तो ये है, मेरी तो ऐसी आदतें हैं। कई लोग अपनी कमियों का बहुत गुणगान करते हैं, अपनी कमियों पर बहुत नजर डालते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब साथी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, बाबा कई बार कहते हैं, ये मिसाल देते हैं, किसी का एक दोस्त कोई अच्छी पोस्ट पर होता है तो भी वो कहता है तुम फिक्र नहीं करो ना, मेरा दोस्त इस पोस्ट पर बैठा है, मैं तुमको इस केस से बरी करा दूंगा, इसमें मैं तुम्हारे को मदद कर दूंगा। हमारा दोस्त कौन है? है निश्चय, पक्का निश्चय है? अगर थोड़ा भी चरा भी निश्चय में संशय होगा ना तो बाबा कुछ नहीं करेगा। इसलिए बहुत पक्का विश्वास, और अंदर से आप सब कहो कि हमारा जो बाबा है ना वो सबको मुक्ति देने वाला है, हमारा बाबा सबको पति से पावन बनाने वाला है, हमारा बाबा सबकी गति सदगति करने वाला है, ऐसा मेरा बाबा है। कोई भी दुखी हो, अशांत हो, परेशान हो, भटक रहा हो, कितना भी निराश हो, उदास हो, हम सबकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बाबा कौन है, सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है, हजार भुजाओं वाला है, सिंगल नहीं है। लेकिन उस निश्चय और नशे से रहो, उस रुहाब में रहो। तीन चीजें ब्राह्मण जीवन में बहुत जरूरी हैं, जिसके प्रैक्टिस करना। एक रूहानियत, जितना हो सके नियत के अंदर रूह की स्मृति आ जाए, देह अभिमान समाप्त हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, रूह है। भ्रकुटी में चमकती हुई मणि को देखने का अभ्यास कर लो। अपने आप पे देह भान की जितने भय हैं, जितनी चिंताएं हैं, जितनी बॉडी कॉन्शियस की खिंचाव है, एक संदेश में बाबा ने कहा था, जब आत्मा भ्रकुटी में बैठती है, उस स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो जैसे सांस जो है ना, सब चारों तरफ से निकल करके, हर कर्मेंद्रिय से निकल करके यहां स्थिर हो जाती, एक जगह पर स्थिर हो जाती। ऐसा अभ्यास इस रूहानियत का कर लो, जो देह अलग और देही अलग, आत्मा और शरीर का अलग अनुभव होने लगे। चलते फिरते ये अलग है, मैं अलग हूं, मैंने वस्त्र धारण किया हुआ है, ये रूहानियत। और दूसरा, चलते फिरते एक बहुत सुंदर रुहाब, रोब नहीं, रोब चलन से दिखाई देता है, चलने फिरने उठने बैठने से लगता बड़ा रोबदार, देखो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है। रोब जो है वो अहंकार का प्रतीक है। रोब वाला कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी को दुख दे देगा, लेकिन जो रुहाब में रहता है, रूहानियत के नशे में रहता है, अलौकिक सम्मान में रहता है, मैं किसका हूं, मेरा कौन है, वो रुहाब कहलाता है। चेहरे पर दिखाई देता है, इसके चेहरे पर रुहाब है, रंगत है, पर्सनैलिटी दिखाई देती है, जिसमें प्योरिटी भी है, स्नेह भी है, सम्मान भी है, सम्मान भी है, कभी भी निराश उदास नहीं होता। एक अहम और दूसरे निराशा, ये दो ब्राह्मणों के शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु। अहम आ गया, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, बाबा कहता ये मरा, तूने कहां से किया, तेरे अंदर क्या था, करण करावन हार बाबा करा रहा, जिससे भी चाहे करा ले, हम सिर्फ निमित्त बन करके हाँ जी करें ना, बाबा आप कराने वाले बैठे हो, आप करा लो, मेरे अंदर शक्ति नहीं, लेकिन आप कराने वाले समर्थ हो, इसलिए करा सकते हो। हम लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है, कभी भी दादियों ने कोई भी सेवा दी है, कभी भी ये नहीं कहा मैं नहीं कर सकता हूं। अगर वो दे रहे हैं सेवा, तो सेवा के साथ साथ दुआएं हैं, वरदान है, शक्ति है, सकास है, वो करा देगी और करा लेती है, अच्छे से अच्छे काम करा लेती है। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैंने सीखा ही नहीं है, तो बाबा कह नहीं किया, नास्तिक हो गया। इसलिए कोई भी कार्य मिले, कोई भी सेवा मिले, कोई छोटी सेवा नहीं, कोई बड़ी सेवा नहीं, सिर्फ दिल से करो, वो सेवा सबसे बड़ी है। हम लोगों ने ये अनुभव किया है बाबा की यज्ञ में रह करके, कि हमने हर सेवा में बाबा दादियों को कहा हाँ जी कर लेंगे, हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाओ। ऐसा आज तक का अनुभव है, उन्होंने मुझे कहा है और दोबारा नहीं पूछा हुआ या नहीं हुआ, वो जानते हैं, इसको कह दिया माना हो गया, कह दिया हो गया, इतना निश्चय और विश्वास होना चाहिए। तो बड़ों की दिल जीतने का एक तरीका यही है कि जो बड़े कह रहे हैं सचमुच कल्याण है, उसके अंदर उनके पीछे बाबा है, हम सिर्फ निमित्त हाँ जी कर ले, बस बाबा करा लेगा। इसने कहा, जैसे आजकल बाबा की मूर्तियां तीन चार दिन चल रही, तीन चार दिन से, अरे बच्चे कभी भी नहीं सोचो, ब्रह्मा ने कहा, अरे अच्छा इसने कह दिया, तुमने कह समझ लिया, शिव बाबा ने कहा है, कुछ गलत हो गया मान लो, बाबा का वो रथ है, अगर उसके द्वारा उसने कुछ कह दिया है, ब्रह्मा ने कुछ कह दिया और आपका नुकसान भी हो गया, तो उसे बाबा ठीक कर लेगा, जवाबदार हो बैठा इसके साथ। इतना विश्वास होना चाहिए कि बाबा ने कहा माना, हुआ पड़ा, सब सही होगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना अंदर का निश्चय, इतना एक बल, एक भरोसा, तो बाबा कोई भी कार्य के लिए कहता है, बच्चे कभी भी नहीं सोचो, कभी भी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, अहम और बहम में नहीं आना, दिल से कष्ट नहीं होना। तो रूहानियत, रुहाब, और तीसरा चाहिए रहम। रहम दिल, रहम माना ये नहीं है कि कोई रहम करते करते हमारे में ही फंस जाए, या मैं किसी को फंसा दूं, किसी में फंस जाऊं। रहम दिली का संस्कार भी बाबा कहता है श्रीमत के अनुसार चाहिए। आजकल कई आत्माएं रहम करते करते उसके पीछे फंस जाती है। ज्ञान युक्त रहम, रहम ऐसा नहीं करना जो कोई कमजोर है, दिल से कष्ट है, बेचारी इतना उदास है, चलो इसको हम सहारा दे दें, और सहारा देते देते अपने में फंसा के चले जाओ। आजकल रहम दिल ऐसे हो जाते हैं जो रहम करते करते अपने में फंसा लेते, बाबा दूर हो जाता, परिवार दूर हो जाता। इसलिए बाबा कहता है ये रहम का गुण बहुत नुकसान करता है, कभी स्थिति खराब कर लेंगे। इस बहन को ऐसा क्यों बोला जाता, इसके साथ ऐसा क्यों किया जाता? अरे भाई तुमको किसने जवाबदारी दी है, उसका कोई हिसाब किताब होगा, उसकी कोई बातें होंगी, उसके कारण उसको कोई ने कुछ कहा है, तुम कौन होते हो बीच में पड़ने वाले, ऐसे रहम दिल क्यों बनते हो? तो कभी भी किसी के बीच में ऐसा रहम नहीं करना जो रहम भी नुकसान कर दे। सबसे अच्छा है न फंसना है न फंसाना है। एक बाबा, सचमुच एक बाबा बन करके, मेरा बाबा मेरे साथ है, और सब कुछ बाबा को देना, बाबा के आगे अपने आप को समर्पित कर देना, निमित्त होकर के चलना, ट्रस्टी बन करके रहना, जो भी आपको दिया है बाबा ने, जो कुछ बाबा ने दिया है, धन है, तन है, अच्छा मन है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा परिवार है, बहुत कुछ मिला है आप सबको, आप सदा ये ध्यान रखो ये बाबा की देन है, बाबा ने दिया है, दाता बाबा है और उसने दिया है, हम सब उसको यथार्थ रीति से ट्रस्टी बन करके संभालें और यूज करें। देने वाले ने सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर हमने गलत रास्ते पर यूज कर लिया तो हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए बहुत ट्रस्टीशिप की, ईमानदारी की भावना, बहुत ऑनेस्टी चाहिए, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी है कि बाबा की अमानत है, शरीर भी उसकी अमानत है, गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, गलत संग में नहीं जा सकता, इसको कहीं भी इधर उधर नहीं लगा सकते, केवल बाबा के लिए है। ये मन बाबा की अमानत है, मन में कोई भी इधर उधर के संकल्प आ जाएं, आप उसी समय उसको कंट्रोल करो, मैंने तो मन बाबा को दे दिया है, मन की लगाम तो बाबा के हाथ में, फिर ये क्यों जाता है इधर उधर, क्या मेरी मनमत तो नहीं है? इस मन के ऊपर एक मनमत दूसरा परमत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देना, कभी भी मन अपनी मत न चलाए। कई बार बाबा की मुरलियों में भी अपनी मत चला देते। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे बहुत समझदार हैं, बाबा को भी राय देने लगते हैं, मन मत से बाबा की मुरली लेकर के कहेंगे देखो बाबा कहता है ना पांच तो आठ ही होंगे ना, ये ड्रामा तो बना बनाया है ना, फिर क्यों इतनी मेहनत करूं, जो पाया होगा कल पहले वही तो मिलेगा। बाबा कहता मुझे भी ज्ञान देने लगते हैं, नॉलेजफुल बनो ना, बाबा ने फुल नॉलेज दी है कि बच्चे ड्रामा बना बनाया है, लेकिन बना तब बना, कब बना, जब बनाया, हर सीन नई रिपीट हो रही है, इसलिए इतना मर्ज हो जाता है जो पता ही नहीं चलता कल क्या होने वाला है। हम बना रहे हैं तो बन रहा है, भले बना बनाया है, लेकिन हम बनाएंगे तो बनेगा। इसलिए बहुत यथार्थ रीति से हर बात को समझना ज्ञानी तु आत्मा की निशानी है। हम ज्ञानी तु आत्माएं हैं, कभी भी बाबा की मुरली में मन मत न चला दें, बाबा ऐसे कहता, बाबा ऐसे कहता, कुछ न कुछ इसमें रहस्य हैं, और किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की श्रीमत बच्चों को मिली है। हमेशा मुरली के अंदर कोई वैरायटी मत होती। एक दिन बाबा कह रहा है बच्चे बाइस्कोप देखने में कोई हर्जा नहीं है, दूसरे दिन कहता है बाइस्कोप सिनेमा सिन की माँ है, पाप है, कभी नहीं जाना। अब सुनने वाला मूंझ रहा है कि कल तो बाबा ने छुट्टी दी थी मुरली के अंदर, और दूसरे दिन कहता बच्चे कभी नहीं देखना। अब समझने वाले को इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि बाबा के सामने जैसा बच्चा वैसे उसके लिए मत। कोई ऐसा बच्चा सामने आया होगा जिसके आगे इतना बंधन होगा, जो सिनेमा के बिना उसको बहुत सारी मार पीट ये होती होगी, तो बाबा ने अरे बच्चे देख लिया तो क्या हर्जा, तेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको छुट्टी दे दिया, देख लो। और जिसके आगे कोई बंधन ही नहीं है, जिसको कोई जरूरत नहीं है, कोई बात ही नहीं है, उसको क्यों अपनी बुद्धि को इन बातों में बेकार करना, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो बाबा श्रीमत दे रहा है, लेकिन श्रीमत किसी समय के अनुसार किसी बच्चे के लिए जो मिली है वो मुरली बन गई। इसलिए समझदार बच्चे हैं, देवता बनने के लिए मुझ आत्मा को किन गुणों को, किन लक्षणों को धारण करना है ध्यान रखो। अगर कोई भी बात आपके योग को तोड़ रही है, आपके समय को, अपने संकल्पों को, अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रही है, तो माना वो श्रीमत नहीं है। अगर व्यर्थ जा रहा है और श्रीमत कह रही है तो माना वो श्रीमत में कहीं पर भी गलती है। इसलिए यथार्थ मुरली को यथार्थ रीति से समझना, जिसमें समय शक्तियां हमारे संकल्प नष्ट न हो। तो मनमत और परमत के प्रभाव से बच करके एक बाबा की श्रीमत सिर माथे, जो बाबा की आज्ञा सिर माथे, ऐसा बाबा का आज्ञाकारी सपूत ईमानदार वफादार बन करके, मेरा बाबा कहना माना बाबा का बहुत आज्ञाकारी है, सपूत है, हर कदम पर कदम रखने वाला, फुट स्टेप लेने वाला है, जैसा बाबा ने किया वैसा ही करना है। हम सब बाबा की श्रीमत को सामने रखें, बाबा की मुरली ही श्रीमत है, और श्रीमत को सामने रख करके चलते चलें, ये बहुत सहज योगी जीवन है। मेहनत का अनुभव मत करो, बाबा ने जो दिया है देते चलो बस। बाबा कहता बच्चे जिस दिन ये स्मृति आ जाएगी कि मेरा बाबा दाता है, सबका दाता एक है और वो मेरा है, तो मांगने के संस्कार जो है ना खत्म हो जाएंगे। मांगते हैं ना कई बार, बाबा मदद कर दो, बाबा हिम्मत दो, बाबा शक्ति दो, ये जो दो दो शब्द करते हो ना बाबा को अच्छा नहीं लगता है। मेरे बच्चे और मांग रहे हैं मेरे से, किसी से भी क्यों मांगे, जब दाता हमारा बाबा सबको देने वाला है तो हमारे को कमी रखेगा क्या। इसलिए बहुत निश्चय बुद्धि होकर के बस प्यार से दिल से हमेशा अंदर की आवाज से बोलो बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, सारा ज्ञान इसमें समाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बन करके बाबा को सदा साथ रख करके नॉलेज फुल बन करके अब बाबा के समान क्या बनना है, दाता विधाता वरदाता। जो बाबा ने हम सबको दिया है अपने दृष्टि से अपने मस्तक से अपने बोल से अपने अच्छी अच्छी वाइब्रेशन से देते चलो बस। बाबा ने सबको बहुत कुछ दिया है, कोई कमी है क्या, किसी के पास कमी है तो हाथ उठाओ। अरे सब खजानों की चाबी मिल गया और क्या चाहिए, चाबी लगाओ सिर्फ, लगाना आना चाहिए, उल्टी नहीं घुमा देना। कई लोग उल्टी घुमा देते हैं ताला लाख और टेढ़ा हो जाता है। इसलिए उल्टी चाबी माना पर दर्शन पर चिंतन, ये ऐसा करता वो ऐसा करता चाबी उल्टी हो गई। अरे मैं क्या करता हूं, ये सीधी चाबी है। स्वदर्शन, खुद को देखो बाबा को देखो, तीसरे को देखते भी नहीं देखो, जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है मुझे नहीं देखना, तो सीधी चाबी लगेगी मेरा बाबा की, सब खजाने आपके हैं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो ये जादू की छड़ी बाबा ने हम सबको दी है बहुत प्यार से सच्चे दिल से, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, कोई मेहनत नहीं करो। बाबा क्या कहता है, बच्चे मेरे प्यार में खो जाओ, सागर में समा जाओ, तालाब में बहुत नहा लिया, क्या कहा आज, तालाबों में बहुत नहाया, अभी सागर में समाना सीखो। तो आप सब भट्टी में आए हो किस लिए, सागर में समाने के लिए। तो अभी हम सभी एक घंटा समाएंगे, समा जाएंगे ना सब, मैं कमेंट्री नहीं कराता हूं ध्यान रखना, लेकिन लक्ष्य जरूर दूंगा। भाग्य विधाता ने संगम युग पर जो इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, अलौकिक दिव्य जन्म दिया, इतनी ऊंची पालना, जो सवेरे से सात रात तक साथ निभाता है, गाइड करता है, साकार में न होते हुए भी साकार की अनुभूति कराता है, जो छाया की तरह साथ साथ रहता है, हर पल छत्र छाया के नीचे रखता है। ऐसे प्यारे बाबा की गुणमाला का स्मरण करते हुए हम बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। भाग्य और भाग्य विधाता मेरा बाबा, जिसने इतनी ऊंची भाग्य की लकीर खींच दी है, जो इस जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं, जो दिल गाता है पाना था सो पा लिया, जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया, ऐसे ये नयन बाबा के प्यार में गीले हो जाए, हम बाबा के प्यार में खो जाए। चलो 15-20 मिनट के लिए पहले ये ड्रिल करते हैं। जैसे आत्मा उस सागर के बीच में समाई हुई है, खोई हुई है, देह भान गल गया है, मैं आत्मा एक लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप, बाबा की ज्योति में लीन हो गई। तो प्यार का अनुभव करते करते प्यार के सागर में समा जाओ। ऐसा सुंदर अनुभव पहले ड्रिल में हम सब करेंगे। साकार वतन से पार अपने लाइट के वतन में फरिश्तों की दुनिया में सैर करने चलेंगे। सबसे पहले हरेक अपने चारों ओर बहुत सुंदर चमकीला लाइट का वस्त्र तैयार करो, अनुभव करो, मैं पवित्र आत्मा जो इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर प्रकाश की काया है और उस प्रकाश के शरीर के साथ मैं साकार वतन से पार सूर्य चांद तारा गणों की दुनिया से भी पार अपने लाइट के वतन में बाबा की शीतल गोद में चलेंगे। सूक्ष्म वतन का गहरा अनुभव, फरिश्तों की दुनिया का अनुभव और वहाँ एडवांस पार्टी हम सब का आह्वान कर रही है विश्व सेवा कराने के लिए। तो बाबा के उस फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे, अनुभव करेंगे कि मैं भी बाबा के समान, बाबा के साथ कंबाइंड हो गई हूँ और कंबाइंड बन करके वतन में सबसे दृष्टि लेते हुए पूरे ग्लोब को लाइट दे रही हूँ। ऊपर से साकार वतन को देखो और अपनी सूक्ष्म भावनाओं के आधार से बहुत स्नेह की नज़र सर्वात्माओं को अनुभव कराओ। तो अभी हम अपने सूक्ष्म वतन की फरिश्तों की दुनिया में चलेंगे और बाबा के बाप दादा के उस लाइट के शरीर के साथ कंबाइंड होकर के विश्व की परिक्रमा करते हुए ऊपर से सकास देंगे। अभी हम सब अपने ब्रह्म महतत्व ब्रह्मांड की दुनिया का मूल वतन का अनुभव करेंगे। कैसे ज्ञान सूर्य बाबा अपने बच्चों के साथ मूल वतन में निवास करते हैं, जहां संकल्पों की भी हलचल नहीं, इतनी गहन एकाग्रता के साथ अनुभवों के सागर में समा जाएंगे, गहरी शांति का अनुभव, एकाग्रता का अनुभव, अनुभव की आंख से सिर्फ बाबा के स्वरूप को निहारना और बाबा की लाइट से अपनी आत्मा को चार्ज करना, जैसे उनकी लाइट मुझ आत्मा पर आ रही है और मैं उनके समान संपूर्ण पावन स्वच्छ एक चमकता हुआ सितारा, समानता का अनुभव, परम शांति का अनुभव, एकाग्रता का अनुभव, ऐसी सुंदर स्थिति में बैठो जो पूरे पांचों तत्वों को सकास मिलने लगे, ये स्थान ही मूल वतन बन जाए। सभी अपने अपने सूक्ष्म शरीर से भी न्यारे होकर एकदम शरीरी स्थिति में, बीज रूप की स्थिति में उस परमधाम की अखंड शांति का, अखंड प्रकाश का गहन अनुभव करो।
इतनी गहनता में ले जाने के लिए अपने असली स्वरूप की ऐसी अनुभूति के लिए हम आदरणीय राजू भाई का तहे दिल से थैंक।